आप सुन रहे हैं फीवर पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HT स्मार्टकास्ट।
एक अधूरी कहानी,
एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ।
रोहित का बुखार 7 दिनों से उतर नहीं रहा था। लगातार 103 बुखार और उसी बुखार की बेहोशी में कुछ बुदबुदाए जा रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, क्योंकि शरीर में बढ़े हुए तापमान के अलावा कोई भी समस्या नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जब से वो देवा से होके लौटा था, यही हाल था। घर वाले परेशान हो चुके थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अजीब बात यह थी कि उसने 7 दिनों से ना तो पानी पिया था ना ही कुछ खाया था, लेकिन फिर भी कोई कमजोरी या खून की कमी नहीं देखी डॉक्टरों ने। एक रात अचानक तेज आंधी चलनी शुरू हो गई। रोहित की मां तुरंत दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में पहुंची कि खिड़कियां वगैरह बंद कर दे। तो कमरे में आके देखा, रोहित पलंग पे नहीं था। पहले तो उसकी मां ने राहत की सांस ली कि शायद बेटा अपने आप उठ के बाथरूम गया होगा। फिर देखा बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था और अंदर भी कोई नहीं था। रोहित की मां की नजर तभी खिड़की पे पड़ी, जहां खिड़की की ग्रिल के सरिये ऐसे मरोड़े हुए थे जैसे किसी बच्चे ने आटे के सरिये मरोड़ दिए हों। एक टूटे सरिये पे रोहित की शर्ट का टुकड़ा फंसा हुआ आंधी की हवा में उड़ रहा था। और रोहित की मां आखिरकार चीख पड़ी। किस्मत से रोहित के पिताजी उसी वक्त दरवाजे पे थे, टूर से लौटे थे। हाथों में पकड़ा सूटकेस छोड़ के दौड़े दौड़े अंदर पहुंचे और सब कुछ देखा। साथ में देखा मां जमीन पे बेहोश पड़ी थी, और फिर उनकी नजर पड़ी ऊपर छत पे, जहां किसी छिपकली की तरह रोहित रेंग रहा था और लाल लाल आंखें लिए हुए पुतलियां उलट कर कुछ बुदबुदाए जा रहा था। रोहित के पिताजी ने यह देखते ही सबसे पहले उसकी मां को बाहर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाया और फिर अपनी जेब में रखा लोहे के तावीज जैसा कुछ निकाला और सीधे उछाल के रोहित की ओर फेंका। छिपकली जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा लपक के निकल लेती है, वैसे ही रोहित ने अपनी हथेली में वो तावीज जैसी चीज लपकी, लेकिन लपकते ही किसी राक्षस जैसी आवाज में चीख पड़ी। जिस मुट्ठी में उसने तावीज को पकड़ा था उसमें से धुआं निकलने लगा, और मुट्ठी खोल के तड़पते हुए लाख झटकने के बावजूद भी वो तावीज गिर नहीं रहा था, बल्कि रोहित की खाल को जलाता हुआ धंसता जा रहा था। और कुछ ही पल बाद रोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पिताजी ने माथे पे हाथ रख के देखा, बुखार उतर चुका था। उन्होंने मां को जगाया और कहा, उठो, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है। वही हुआ ना जो मैंने सोचा था। मना किया था मैंने कि बिना इस तावीज के वहां नहीं जाना, लेकिन मेरी सुननी कहां है किसी को। तुमसे भी मैं उसी दिन से कह रहा था कि यही है इलाज, लेकिन नहीं, तुमको मेरी बात कहां सुननी है। बहुत पढ़े लिखे हो ना तुम दोनों मां बेटे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हैं ऐसी जो मेरी तुम्हारी हम सबकी समझ से परे हैं। ये थी 15 सितंबर 1997 की रात। इस रात की कहानी आज भी याद करते ही रोहित और उसके घर वालों के बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। 7 दिन पहले लखनऊ शहर से 26 किलोमीटर दूर बाराबंकी नाम का पंचायती इलाका पड़ता है, जहां देवा शरीफ नाम का एक कस्बा है। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है वहां पर, इसीलिए नाम पड़ा देवा शरीफ। बेहद खूबसूरत सा एहसास होता है वहां जाते हुए। एक लंबी गली है जहां खाने पीने की चीजें मिलती हैं और दरगाह पे चढ़ाने के लिए फूल और चादरें भी। अंदर जाते हुए दूर से ही कव्वालों की आवाज से फिजा में एक सुकून सा भर जाता है और लुबान की खुशबू से हवा। कहते हैं सुकून का दूसरा नाम है देवा शरीफ। यहां एक पीछे का हिस्सा है दरगाह का, जहां पे ओझा बाबा वगैरह बैठते हैं और फरियादियों का इलाज करते हैं। 7 सितंबर 1997 सुबह सुबह रोहित वहां पहुंचा था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उसे नए नए आए केबल टीवी वाले चैनल्स में से एक में बंबई में नौकरी मिली थी, और क्योंकि वो लखनऊ का रहने वाला था तो उसकी बताई देवा शरीफ की कहानियों को सुन के चैनल वालों को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने रोहित को एक हैंडीकैम इशू किया और कहा, अपनी नजरों से देवा शरीफ हमें दिखाओ, अगर हमें पसंद आया तो पूरी टीम लेके जाना और फुल डॉक्यूमेंट्री बना के लाना। ये आइडिया अगर हिट हो गया तो रोहित की जिंदगी बदल सकती थी, सीधे अमरीका जाने का चांस बन सकता था। रोहित ने अपने एक दोस्त को पकड़ा जिसके पास मोटरसाइकिल थी और दोनों निकल पड़े। रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हुई तो उसे ठीक करवा के पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। एक दफे ख्याल आया कि कल आ जाएंगे, लेकिन रोहित ने सोचा निकल पड़े हैं तो वारिस ही मदद करेंगे। अब देवा शरीफ में कैमरा लिए विदेशी तो हमेशा ही आते जाते रहते थे, लेकिन हैंडी कैम लिए हुए कोई पहली दफे आया था। पहले तो रोहित को रोक के पूछताछ करी गई। जब देखा लड़का दुनिया को इस जगह की खासियत और खूबसूरती दिखाना चाहता है तो किसी ने मना नहीं किया। रोहित पहले अंदर पहुंचा, माथा टेका, चादर चढ़ाई और फिर पूरी दरगाह को घूम घूम के शूट करने लगा। लेकिन जैसे ही पीछे के उस ओझा बाबाओं के दरबार की ओर पहुंचा तो कदम एकदम से ठिठक गए। सामने एक लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और गर्दन से पांव तक का लंबा काला चोला पहने एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं, पुतलियां ऊपर की ओर थीं और होठों से लगातार कुछ बुदबुदाए जा रहा था। रोहित ने उस आदमी का छोटा सा फुटेज लिया और आगे बढ़ गया। घूम के थोड़ा ही आगे पहुंचा होगा कि उसने देखा एक और हूबहू वैसे ही होलिये वाला आदमी वैसी ही आंखें उल्टे हुए खड़ा हुआ बुदबुदाए जा रहा था। उसका भी छोटा सा फुटेज लेके आगे पड़ गया तो एक और आदमी वैसे ही दिखा, उसका भी फुटेज लेके आगे बढ़ा तो एक और, कुल मिला के चार ऐसे बाबा दिखे। रोहित सोच ही रहा था कि ये क्या था और क्यों था कि एक आवाज गरज के बोली, किसी भी ओर से कोई भी बुरी ताकत यहां से निकल ना पाए, इसके लिए यहां रात भर पहरेदारी करते हैं ये चारों, पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं हम लोग। अंधेरे के वक्त सबसे ज्यादा ताकत होती है रूहों में, इसीलिए इनको बांधना जरूरी होता है। रोहित मुस्कुराया और उस आदमी की ओर कैमरा घुमा के उसका फुटेज लेता हुआ कैमरा के पीछे से ही बोला, बाबा आप कौन? वो आदमी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चलता चला गया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ कुछ आगे जाकर एक ऊंचे से खंभे पे चढ़ के बैठ गया, जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी थी चढ़ने के लिए, और चढ़ के ये भी वैसे ही आंखें उलट करके कुछ बुदबुदाने लगा। यह आदमी बहुत लंबा था, करीब 6'4", लंबी सफेद दाढ़ी जैसे चांदी की बनी हो और वैसे ही लंबे सफेद बाल। रोहित हैरानी भरी आंखों से इन्हें बस देख रहा था। रोहित ने सोचा नीचे उतर के पास से इस आदमी से बात की जाए और पूरी बातचीत शूट की जाए। उसने बस एक कदम बढ़ा करके सीढ़ी पे नीचे जाने को रखा ही था पैर, जब आवाज आई,
बेवकूफ मत बनो, हम चारों यहां खड़े होके पहरेदारी कर रहे हैं, उस्ताद जी वहां बैठे अपना काम कर रहे हैं, और तुम क्या नीचे जाकर शैतान का काम आसान करना चाहते हो?
रोहित ने पलट के देखा तो उन चारों में से एक आदमी कुछ ही दूरी पे खड़ा था और उसकी ओर देखते हुए रोहित बोला,
मैं तो बस फिल्म बनाने जा रहा हूं, आप लोगों का वीडियो लिया है मैंने, उस्ताद जी का भी ले लूं वहां नीचे जाके, फिर चला जाऊंगा। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, चुपचाप अपना काम करके चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो।
उस आदमी ने जवाब दिया,
नहीं शैतान नहीं, बेवकूफ हो तुम, हम लोगों की फोटो लेनी हो तो दिन के उजाले में आना, रात को हमें काम होता है, अगर नीचे उतरे ना तो खैर नहीं तुम्हारी, कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें।
और बस इतना कहना था उसका कि रोहित ने उसकी एक न सुनी, सीधे सीढ़ियों से दंदनाता हुआ नीचे उतर के खड़ा हो गया उसी खंभे नुमा जगह के पास जहां वो बूढ़ा आदमी चढ़ के बैठा था। वहां पहुंचा, एक गहरी सी स्विमिंग पूल जैसी जगह थी जिसके बीच में यह खंभा बना था। उस खंभे के पास पहुंच के खड़ा हुआ और वहीं से दूसरे आदमी की तरफ कैमरा घुमा के बोला,
ऐसा है भाईजान, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मुझे इन दकियानूसी बातों पे न तो यकीन था ना कभी होगा। मेरे बाप भी ऐसे ही फालतू की बातें करके डराते रहते हैं कि बचपन में प्रेत बाधा हुई थी उन्हें और तभी से यहां उस आत्मा को कैद करके रखा है आप जैसे बाबाओं ने। कोई एक तावीज भी है छोटा सा जिसे हमेशा पहने रहते हैं वो। अगर सचमुच ऐसी ताकतें होती और आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं तो कहिए ना उस आत्मा से, मुझे भी पकड़ के दिखाए।
रोहित की ऐसी नीचा दिखाने वाली बातों के बावजूद भी पहले तो किसी ने भी उसे तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर उसके ताने और अंधविश्वास को लेकर के लोगों का फायदा उठाने की बातें बढ़ती गई। वो शूट करते हुए भी ये सब बोलने लगा कि ये वो जगह है जहां लोगों को बांधा जाता है, यहां लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इस तरह की घटिया बातें। आखिरकार वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा उस खंभे से नीचे उतरे और सीधे पहुंचे रोहित के पास, गर्दन से पकड़ के उसे उठा लिया, करीब लाके कानों में फुसफुसा के बोले, तेरे बाप को मैंने ही बचाया था बेवकूफ, मैं ना होता ना तो आज तू ना होता, और अगर तुझे ये सब बकवास और झूठ लगता है तो ये ले, इसे रख ले, मेरी दाढ़ी का बाल है, मेरे जिस्म के हर एक रोम रोम से एक रूह बंधी है और मैं जानता हूं कौन सी कितनी भयानक है। ये वाली वही है जिसने तेरे बाप को पकड़ा था। मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूं, इसीलिए बता देता हूं इसका इलाज वही तावीज है। तेरा बाप टूर पे गया है ना, जब वो लौटेगा तब तू बचेगा, तब तक तड़प।
आप सुन रहे थे
एक अधूरी कहानी,
कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।